अभिवादन। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक श्रृंखला है क्रांतिधर्मी साहित्य, और उसी में से एक पुस्तक जो 1988 से 90 के बीच आई, संजीवनी विद्या का विस्तार, उस पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे।
नमस्कार। हाँ, ये बहुत ज़रूरी विषय है क्योंकि ये उस विद्या की बात करती है जिसे पूज्य गुरुदेव मानते थे कि आज के ज़माने में, मतलब नए सृजन के लिए, ये बहुत ज़रूरी है।
अच्छा।
हाँ, ये वो स्कूली जानकारी या सिर्फ नौकरी पाने वाली शिक्षा नहीं है, उससे कहीं आगे की चीज़ है। पूज्य गुरुदेव ने इसे संजीवनी विद्या कहा, एक तरह से जैसे सोई हुई चेतना को जगाने का ऋषियों का तरीका।
बिल्कुल। और मुझे याद आ रहा है, पूज्य गुरुदेव ने स्वयं वसंत पंचमी 1990 को वंदनिया माता जी से कहा भी था।
हाँ, कहा था
कि उनका ज्ञान शरीर इसी क्रांतिधर्मी साहित्य में जीवित रहेगा और इसे सब लोगों तक पहुंचाना है।
बिल्कुल सही। उन्होंने कहा था कि सब बच्चों से कहना कि मेरे इस ज्ञान शरीर को जन जन तक पहुंचाएं।
तो चलिए इसी पृष्ठभूमि में समझते हैं कि ये संजीवनी विद्या आखिर है क्या और इसके विस्तार का मतलब क्या था। तो सबसे पहले यही सवाल कि ये विद्या, ये संजीवनी विद्या, उस समय की जो सामान्य स्कूली पढ़ाई थी उससे अलग कैसे थी, इसका मूल तत्व क्या था?
देखिए, पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये सिर्फ जानकारियों का ढेर नहीं था, चाहे वो जरूरी हो या गैर जरूरी।
अच्छा।
इसका असली काम था विवेक जगाना, मतलब सही और गलत की पहचान करने की क्षमता देना।
समझ गया।
और साथ ही व्यक्तित्व को निखारना, उसे बेहतर बनाना, जो अंदर छिपी हुई प्रतिभा है उसको उभारना। ये व्यक्ति में शालीनता लाती है, मतलब सज्जनता, उत्कृष्टता। इससे होता यह है कि एक सामान्य मनुष्य भी देव मानव की तरह बन सकता है।
देव मानव।
हाँ, और इसके लाभ भी बताए गए हैं, जैसे आत्मसंतोष मिलता है, समाज में सम्मान मिलता है, और एक तरह का दैवीय अनुग्रह, मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।
तो ये जानकारी से कहीं ज्यादा गहरी बात हुई, जीवन बदलने वाली समझ।
बिल्कुल, ये वो चीज है।
समझ गए। तो ये केवल सूचना नहीं बल्कि इंसान को अंदर से बदलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन पूज्य गुरुदेव को इसे इतने बड़े पैमाने पर, मतलब इसके विस्तार की जरूरत क्यों महसूस हुई? उस समय ऐसा क्या चल रहा था?
हाँ, उनका मानना ये था कि जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी ना, वो व्यक्ति और समाज की जो मूल समस्याएं थी उनका हल नहीं दे पा रही थी।
जैसे कि?
जैसे व्यक्ति का पूरा विकास कैसे हो, है ना, समाज की जो संरचना बिगड़ रही थी उसे फिर से कैसे ठीक किया जाए, आर्थिक व्यवस्था की दिक्कतें थी, समाज में बहुत सी अवांछनीयता, मतलब गलत चीजें फैली हुई थी, उनसे कैसे निपटा जाए।
हाँ, ये सब तो बड़ी चुनौतियां थी।
बिल्कुल। तो इन सब विकृतियों से निपटने के लिए और सही चीजों को, औचित्य को स्थापित करने के लिए इस संजीवनी विद्या का बड़े स्तर पर प्रसार बहुत जरूरी समझा गया। और इसकी एक खास बात यह भी थी कि ये ज्ञान सीधे अंतःकरण में, मतलब दिल में उतरता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि कोई पढ़ा लिखा ही हो।
अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प बात है कि इसे साक्षरता से नहीं जोड़ा गया।
हाँ।
तो फिर सवाल उठता है कि इसे उन लोगों तक कैसे पहुंचाया गया जो शायद पढ़ लिख नहीं सकते थे या आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं थे। आपने युग साहित्य और किसी खास वितरण प्रणाली की बात की थी।
हाँ हाँ, पूज्य गुरुदेव ने ये युग साहित्य तैयार किया जिसमें कई विषयों पर मार्गदर्शन था। अब चुनौती थी इसे सब तक, खासकर अशिक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक पहुंचाना।
सही।
तो इसके लिए युग शिल्पियों का आह्वान किया गया, मतलब समर्पित कार्यकर्ता। उनसे कहा गया कि रोज कम से कम 20 पैसे और 2 घंटे का समय दें।
बस 20 पैसे और 2 घंटे?
हाँ, न्यूनतम। इस छोटी सी राशि से हर महीने जो साहित्य छपता था उसे खरीदना था, फिर पहले खुद पढ़ना, परिवार को सुनाना।
अच्छा।
और फिर झोला पुस्तकालय योजना के तहत अपने जान पहचान के क्षेत्र में दूसरों को मुफ्त में पढ़ने देना।
झोला पुस्तकालय, ये क्या था?
मतलब अपने झोले में कुछ पुस्तकें रखकर घूमना और लोगों को पढ़ने के लिए देना, और जो पढ़ सकते थे वो उन लोगों को सुनाते थे जो पढ़ नहीं सकते थे।
वाह, ये तो जमीनी स्तर पर ज्ञान बांटने का बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली तरीका लगता है, जैसे बिना इंटरनेट के जमाने की एक चलती फिरती लाइब्रेरी।
बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही।
इसमें अखंड ज्योति पत्रिका की भी कोई खास भूमिका थी?
निश्चित रूप से। अखंड ज्योति, जो उस समय अनुवादों को मिलाकर करीब 5 लाख छपती थी।
5 लाख?
हाँ, उसे पूज्य गुरुदेव अपनी मुख्य संरचनात्मक संपत्ति मानते थे।
अच्छा।
और निर्देश ये था कि हर अंक कम से कम 5 लोगों द्वारा पढ़ा जाए या सुना जाए। तो इस तरह से ये लगभग 25 लाख पाठकों तक पहुंचती थी।
25 लाख?
हाँ, और आगे का लक्ष्य तो और भी बड़ा था। कम से कम 1,00,000 ऐसे समर्पित अध्यापक यानी स्वयंसेवक तैयार करना जो फिर करोड़ों लोगों तक ये ज्ञान की ज्योति पहुंचा सके।
1,00,000 स्वयंसेवक, ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। इस सबके केंद्र में शांति कुंज की क्या भूमिका रही? वहां ऐसा क्या खास होता था?
शांति कुंज में 1990 के वसंत पर्व से 5-5 दिन के विशेष प्रशिक्षण सत्र शुरू किए गए।
5 दिन के सत्र?
हाँ। और ये सिर्फ जानकारी देने वाले सेशन नहीं थे, इनमें साधना की प्रक्रियाएं भी शामिल थी।
साधना किस तरह की?
जैसे तपश्चर्या, मतलब अच्छे आदर्शों पर चलने के लिए अनुशासन और खुद को बेहतर बनाने के लिए परिश्रम करना। दूसरा था प्रायश्चित, यानी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए कुछ प्रतीकात्मक और कुछ वास्तविक कदम उठाना।
अच्छा, प्रायश्चित भी?
हाँ, और साथ ही शांति कुंज का जो प्राणवान वातावरण था उसका प्रभाव। माना जाता था कि वहाँ ऋषि युग्म का सूक्ष्म अनुदान, उनकी प्रेरणा शक्ति महसूस होती है।
अच्छा।
और मान्यता ये थी कि जले दीपक ही बुझे दीपकों को जला सकते हैं, मतलब जो खुद प्रशिक्षित हैं, जिनके अंदर वो ऊर्जा है, वही दूसरों में चेतना जगा सकते हैं।
समझ गई। तो ये सिर्फ पढ़ने सुनने तक सीमित नहीं था, बल्कि खुद को साधना और अनुशासन से बदलने की भी बात थी, एक पूरी जीवन पद्धति जैसा।
बिल्कुल, एक व्यवहारिक पक्ष था इसका।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो संजीवनी विद्या का विस्तार सिर्फ एक पुस्तक या कोई विचार नहीं है।
नहीं,
ये तो व्यक्ति और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक पूरा दर्शन है, एक व्यवहारिक कार्यक्रम है, और यही वो ज्ञान शरीर है जिसे पूज्य गुरुदेव जीवित रखना चाहते थे।
बिल्कुल सही कहा आपने। ये विद्या विवेक जगाकर, व्यक्तित्व को निखारकर और फिर तप साधना से जुड़े हुए सामूहिक प्रयासों से, जैसे युग साहित्य का प्रसार और प्रशिक्षण, इनके माध्यम से एक बेहतर युग लाने का आह्वान करती है।
बेहतर युग?
हाँ, जिसे आचार्य जी ने प्रज्ञा युग कहा, यानी ज्ञान और विवेक पर आधारित युग। ये दिखाती है कि छोटे छोटे समर्पित प्रयास भी कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, भले ही हालात कितने भी मुश्किल क्यों न दिख रहे हों।
बिल्कुल, ये बहुत प्रेरणादायक है। आज की इस चर्चा के बाद मेरे मन में और शायद श्रोताओं के मन में भी ये विचार आ सकता है कि आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, इतनी भाग दौड़ और चुनौतियां हैं, इनके बीच इस संजीवनी विद्या के कौन से सिद्धांत या अभ्यास ऐसे हो सकते हैं जो व्यक्तिगत शांति पाने और समाज में तालमेल बढ़ाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हों।